आगे लिखिए आयत 20 से 30। टॉपिक है अल्लाह ही दाता है। अलम तरौ अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान की हर चीज़ को हमारे काम में लगा रखा है और तुम्हें अपनी ज़ाहरी और बातनी नेमतें भरपूर दे रखी हैं। बाज़ लोग अल्लाह के बारे में बग़ैर इल्म के, बग़ैर हिदायत के और बग़ैर रोशन किताब के झगड़ा करते हैं, और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह की उतारी हुई वही की ताबेदारी करो तो कहते हैं कि हमने तो जिस तरीके पर अपने बाप दादाओं को पाया है इसी की ताबेदारी करेंगे, अगरचे शैतान इनके बड़ों को दोजख के अजाब की तरफ बुलाता हो। और जो शख्स अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दे और वो हो भी नेकुकार, यकीनन इसने मजबूत कड़ा थाम लिया, तमाम कामों का अंजाम अल्लाह की तरफ है, काफिरों के कुफर से आप रंजीदा ना हो। आखिर इन सब का लौटना तो हमारी ही जानिब है, फिर हम इनको बता देंगे जो कुछ उन्होंने किया। बेशक अल्लाह सीनों के राज तक जानता है। हम इन्हें गो कुछ फ़ायदा यूं ही दे भी दें लेकिन बिलाहर हम इन्हें नहायत बेचारगी की हालत में सख्त अजाब की तरफ हंका ले जाएंगे। अगर आप इनसे पूछें कि आसमान और ज़मीन का खालिक कौन है, शुरू से ये बात चल रही है, शोर को बेदार किया जा रहा है इन आयतों में, तो ज़रूर जवाब देंगे कि अल्लाह। तो कह दीजिए कि सब तारीफ़ों के लायक अल्लाह ही है लेकिन इनमें से अक्सर बेइल्म हैं। आसमानों में और ज़मीन में जो कुछ है वो सब अल्लाह ही का है, यकीनन अल्लाह ताला बहुत बड़ा बेनियाज और हमदो सना के लायक है। रुए ज़मीन के तमाम दरख्तों की अगर कलमें बन जाएं, इमेजिन करें कितने दरख्त हैं। हमारे मुल्क में इतने दरख्त नहीं हैं, या शायद हमने काट दिए हैं। बाहर की दुनिया में बहुत दरख्त हैं, के वहाँ दरख्त काटना जुर्म है। वो कहते हैं लोगों को आप महरूम कर रहे हैं ऑक्सीजन से, और एक नज़र डालें ना तो आपके सामने कई लाख दरख्त होंगे। अल्लाह कहते हैं सब दरख्तों के अगर कलम हो जाएं, यानी उनको काटें फिर उसकी लकड़ी के कलम यानी लिखने की चीज़ें बनाएं, और तमाम समंदरों की स्याही हो और इसके बाद 7 समंदर और हों, ताहम अल्लाह के कलमात खत नहीं हो सकते। बेशक अल्लाह ताला गालिब और बाहिकमत है। तुम सब की पैदाइश और मरने के बाद ज़िंदा करना ऐसा ही है जैसे एक नफ्स का, यानी अल्लाह के लिए सारी दुनिया को मार देना और दोबारा ज़िंदा कर देना ऐसे जैसे एक बंदे को, एक नफ्स को पैदा किया। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला है। सच है ना कि हमने अल्लाह की कदर नहीं पहचानी, हमने उसकी कुदरत को पहचाना ही नहीं है। क्या आपने देखा नहीं कि अल्लाह ताला रात को दिन में और दिन को रात में खपा देता है? सूरज चांद को इसी ने फरमा बरदार कर रखा है, हर एक मुकर्रर वक्त तक चलता रहे। अल्लाह हर उस चीज़ से जो तुम करते हो खबरदार है। ये सब इंतजामात इस वजह से हैं कि अल्लाह ताला हक है। ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ। ये सब इंतज़ामात इस वजह से हैं कि अल्लाह ताला हक है, और इसके सिवा जिन जिन को लोग पुकारते हैं सब बातें हैं, और यकीनन अल्लाह ताला बहुत बुलंदियों वाला और बड़ी शान वाला है। अल्लाह हमें उसकी शान को समझने वाला बना दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू ज़र से, जानते हो ये सूरज कहाँ चला जाता है? आप भी सोचें, अभी थोड़ी देर बाद सूरज डूब जाएगा ना, तो इधर से कहाँ जाता है? जवाब सुनिए, अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। आपने फरमाया ये जाकर अल्लाह के अर्श के नीचे सजदे में गिर जाता है और अपने रब से इजाज़त चाहता है। करीब है कि एक दिन इससे कह दिया जाए कि जहाँ से आया वहीं लौट जा, यानी सूरज फिर मशरिक़ की बजाय मग़रिब से निकलेगा, और वो क़यामत से पहले का वक्त है जब तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अभी तौबा कर लेते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। सही बुखारी की ये रिवायत थी 3199। क्या सीखा इस रुकू से? अल्लाह की दी हुई ज़ाहरी और बातनी नेमतों से फ़ायदा उठाना है, कुरान की पैरवी करनी है, बाप दादा के गलत तरीक़ों की पैरवी नहीं करनी, शैतान की बातों में नहीं आना, अल्लाह की हिकमतों को समझना है, यकीन रखना है कि पोशीदा बातों का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। चलिए आखिरी आयतें सूरत की जो आपकी मेरी असल को खोल देंगी। टॉपिक लिखिएगा आयत नंबर 31 से 34 तक का, दुखों में फितरत पर पड़ा हुआ पर्दा हट जाता है। इसीलिए तो कभी मैयत वाले घर में किसी ने नहीं कहा कि म्यूज़िक का इंतज़ाम है, सेग्रीगेशन क्यों है, मिक्स गैदरिंग चाहिए। उस वक्त तो सब मौत मौत की बातें करते हैं। اور خوشیوں میں کہتے ہیں لو اب اس کے بغیر شادی کیسے ہوگی. آئیے پڑھتے ہیں. الم ترن الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے. یقیناً اس میں ہر ایک صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اور جب سمندر پر موجیں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ نہایت خلوص کے ساتھ اعتقاد کرتے ہوئے صرف اللہ کو پکارتے ہیں. یہ ہیں فطرت پہ پڑے ہوئے پردے چھٹے ہوئے. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بد عہد اور نہ شکرے ہوں. تو کرو کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہو جاز عن والدہ شیئا. ایک سال مجھے یاد نہیں ہے 2007 تھا یا 8 یہ آیت اس بارے کی آیت تدبر میں نے بتائی تھی. اس پہ ایک لیکچر بھی بنا تھا جو سی ڈی میں بھی گیا اور بہت فائدہ ہوا تھا. اس کا ٹاپک بھی یہی تھا کہ وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے. نفس کے دھوکے کچھ اس طرح کا بھی اس کا نام تھا. آئیے سنیے شیطان آپ کو مجھے کیسے دھوکے میں ڈالتا ہے. لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا. یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے. دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے. اللہ میں نفس کے دھوکوں سے اور شیطان کے دھوکوں سے بچا لے. بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. یہاں سے پانچ چیزیں نوٹ کیجئے گا. اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے. کیا؟ وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا کل کیا کچھ کرے گا. نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور صحیح خبر والا ہے. تو کیا سیکھا؟ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے. اس کے فریب میں نہیں آنا. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ناممکن کو ممکن بناتا ہے. لہٰذا اسی سے مانگنا ہے. شکر گزار بندی بننا ہے. عہد شکنی نہیں کرنی. قیامت کے دن کوئی رشتہ دار کسی کے کام نہیں آئے گا. اس لیے آج دنیا میں اپنی فکر کرنی ہے. ایک خوبصورت سورت پوری ہوئی تو اس سے بھی خوبصورت سورت آگے ہے. سورت سجدہ. قرآن پاک میں سجدہ نام کی دو سورتیں ہیں. ایک الف لام میم سے شروع ہوتی ہے تو وہ یہ والی ہے. دوسری حامیم سے شروع ہوتی ہے اس لیے اس سورت کو حامیم سجدہ کہتے ہیں جو آگے آئے گی. اس سورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ رات کو سونے سے قبل الف لام میم سجدہ اور سورت ملک پڑھا کرتے تھے. یہ ترمذی کی روایت ہے 892 نمبر کی. کیا بات ہے اس میں؟ آئیے آج اس کے ترجمے سے سنتے ہیں. اور کوئی تو بات ہوگی جو ہر رات آپ اس کو پڑھتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. سورت شروع ہوتی ہے کتاب کے ذکر سے. پہلی 11 آیتیں 1 سے 11 ٹاپک لکھیے گا. اللہ خالق مالک اور رب کائنات ہے. جب وہ سب کچھ ہے تو پھر ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا پھر عرش پر قائم ہوا. تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں. کیا اس پر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے. یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا، زبردست خالق، بہت ہی مہربان، جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی. دل چاہ رہا ہے اس جملے کو دوبارہ بولوں. جس نے نہایت خوب بنائی جو بھی چیز بنائی. سچ ہے نا؟ कोई चीज़ देखिए, ऑरेंज, अनार, इवन करेला, सब्ज़ी जब फ्रेश आती है कभी उसका हुसन देखा करें। इंसान, बच्चे, पहाड़, दरिया, है कोई चीज़ जिसको आप देख कर कहें कि अल्लाह ने जान छुड़ाई है? तो हम कैसे इस कुरान से जान छुड़ाएं? नौज़बिल्ला, हमें भी इसको इसका हक़ दे के पढ़ना है इंशाल्लाह। और इंसान की बनावट मिट्टी से शुरू की, फिर इसकी नस्ल एक बेवक़्त पानी के निचोड़ से चलाई, जिसे ठीक ठाक करके इसमें इसने रुख फूकी, इसी ने तुम्हारे कान, आंखें और दिल बनाए, इस पर भी तुम बहुत ही थोड़ा एहसान मानते हो। और उन्होंने कहा, क्या जब हम ज़मीन में रल मिल जाएंगे, क्या फिर नई पैदाइश में आ जाएंगे? बल्कि बात यह है कि वो लोग अपने परवरदिगार की मुलाकात के मुनकर हैं। कह दीजिए कि तुम्हें मौत का फरिश्ता फौत करेगा। आज रात को सूरत मुल्क पढ़ेंगे, सूरह सजदा पढ़ेंगे, इस आयत पे गौर कीजिएगा जो भी पढ़ने लगी हूँ। कुल यतवफ्फाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाउन। कह दीजिए कि तुम्हें मौत का फरिश्ता फौत करेगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है। जी, बाज़ रिवायात में आता है हर रोज़ 4 बार मौत का फरिश्ता आके हमें झांक के जाता है, और एक दिन आएगा तो फिर साथ ले जाएगा। फिर तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। सही मुस्लिम की रिवायत है 2789 अबू हुरैरा से, कहते हैं कि मेरा हाथ थाम कर आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान और इसके दरमियान की तमाम चीज़ें पैदा करके सातवें दिन अर्श पर क़याम किया, मट्टी हफ्ते के दिन बनी, पहाड़ इतवार के दिन, दरख्त सोमवार के दिन, बुराइयाँ मंगल के दिन, नूर बुध के दिन, जुमेरात के दिन जानवर, आदम जुमे के दिन असर के बाद दिन की आखिरी घड़ी में, इसे तमाम रुए ज़मीन की मट्टी से पैदा किया, जिसमें सफ़ेद स्याह अच्छी बुरी हर तरह की थी, इसी बायस औलाद आदम भी बुरी और भली बनी। जी, मुस्लिम की रिवायत है, कितनी डिटेल से बताया कब क्या बना, ब्रेक डाउन है चीज़ों का। आगे भी पढ़ेंगे सूरत हामीम सजदा में आसमान की चीज़ों को बनाने की बात होगी। क्या सीखा? दूसरों को हिदायत की तरफ बुलाना है। क़यामत के दिन कोई सिफारिश काम ना आएगी। हर पोशीदा ज़ाहिर अमल के जानने वाला अल्लाह को समझना है। अल्लाह ही को खालिक मानना है। मरने के बाद जिए जाने पर ईमान रखना है। हमारे पास ये ज़िंदगी अमानत है, इसकी कदर करनी है। अल्लाह ताला तौफीक दे। आगे चलते हैं आयत नंबर 12 से 22। टॉपिक लिखिए, मोमिन और फासिक मैदान हशर में। दो मुख्तलिफ गिरोह हैं, अल्लाह ताला हमें ईमान वालों में कर दे। वलौ तराइज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना वसमेना फ़रजेना नामल सालिहन इन्ना मूक़िनून। इसके तर्जमे पे गौर कीजिएगा। काश कि आप देखते जबकि गुनाहगार लोग अपने रब्बे ताला के सामने सर झुकाए हुए होंगे। इमेजिनेशन में लाइए ज़रा इसको। कहेंगे, ए हमारे रब, हमने देख लिया और सुन लिया, अब तो हमें वापस लौटा दे, हम नेक आमाल करेंगे, हम यकीन करने वाले हैं। अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत नसीब फरमा देते, लेकिन मेरी बात बिल्कुल हक हो चुकी कि मैं ज़रूर ज़रूर जहन्नुम को इंसानों और जिन्नों से पुर कर दूंगा। अब तुम अपने उस दिन की मुलाकात के फरामोश कर देने का मज़ा चखो। हमने भी तुमको भुला दिया और अपने किए हुए आमाल की शामत से हमेशा अजाब का मज़ा चखो। कैसी असाब पे बोझ डालने वाली आयतें। क़यामत के दिन कटहरे में खड़े करके अल्लाह ये सब बातें पूछेगा। हमारी आयतों पर वही ईमान लाते हैं जिन्हें जब कभी इनसे नसीहत की जाती है तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं। हम कब कुरान की बातों को सुनकर सजदों में डर गए खशियत से, और अपने रब की हम के साथ इसकी तस्बीह पढ़ते हैं और तकब्बुर नहीं करते। और सबसे बड़ी इनकी खूबी, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदूना रब्बहुम खौफम व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। इनकी करवटें अपने बिस्तरों से अलग रहती हैं। اللہ ہماری بھی کروٹیں بستروں سے الگ کر دے. رمضان میں تو شاید بستر پہ جانے کا بھی موقع نہ ملے, غیر رمضان میں کیا ہوتا یہ سوچیے. اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اس سب کے بعد ملے گا کیا؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزام بما کانوا یعملون. کوئی نفس نہیں جانتا, اپنا نام لکھے اس نفس کی جگہ, ہم سب تو اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے. ہم تو پاگل ہو جائیں وہ چیزیں دیکھ کر, ہمارے تو امیجینیشن میں وہ چیزیں نہ آئیں جو اللہ نے تیار کی ہوئی ہیں. کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہے. جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے. کیا جو مومن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہو؟ بولیے, نہیں, یہ برابر نہیں ہو سکتے. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہمیش کی والی جنتیں ہیں, مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے. لیکن جن لوگوں نے حکم نہ مانا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے, اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو. یقیناً ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں, یعنی آخرت کی سزاؤں سے پہلے دنیا میں ان کو سزائیں دیں گے. اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اللہ کی آیتوں سے باز کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا؟ یقین مانو کہ ہم بھی گناہ گاروں سے انتقام لینے والے ہیں. تو کیا سیکھا آیت 18 سے؟ اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے اعمال صالح کا اہتمام ضروری ہے. حدیث قدسی ہے, کیا ہوتی ہے وہ؟ لفظ اللہ کے, زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, کسی کان نے ان کو سنا نہیں, اور کسی انسان کے وہم و گمان میں اس کا گزر تک نہیں ہوا. اور آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد چاہو تو یہ آیت پڑھ لو, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں کیا پتہ چلا کہ قیامت کے دن کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا. قیامت کے دن کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا جو ہماری مدد کر سکے اور ہم سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹال سکے. نہ وہاں کوئی سفارشی سفارش کر سکے گا, کرے گا تو قبول نہیں ہوگی. تو صرف انسانوں کے ساتھ رشتوں کو جوڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, شرط یہ کہ ان سے رشتہ بھی اللہ کی خاطر ہو, کیونکہ قیامت کے دن کوئی مدد نہیں کرے گا اللہ کے سوا. کیا سیکھا؟ آخرت میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ دنیا میں نیک عمل کر لیں. سچ ہے نا, ابھی تو زندہ ہے, خود کو مبارک دیں ابھی میں زندہ ہوں, اللہ عمل والا بنا دے. دوزخ میں جانے والے اعمال سے بچنا ہے, تکبر نہیں کرنا, اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لانا ہے, گھر جا کر سجدہ کیجئے گا شکر کا, تہجد پڑھنی ہے, اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. آگے آخری رکوع ہے سورت کا, 23 سے 30. ٹاپک لکھیے, کاش دل جاگ جائیں, کیونکہ آج دل سو رہے ہیں. اور شاعر نے کیا کہا؟ دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرد کوہن کا چارہ. دل کو جو پرانی بیماریاں لگ چکی ہیں نا, اس کا علاج ہے کہ اس دل کو زندہ کیا جائے. کیسے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, بس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہیں کرنا چاہیے, اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا, اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ان میں سے بعض ایسے پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. आपका रब इन सब के दरमियान इन तमाम बातों का फ़ैसला क़यामत के दिन करेगा जिनमें वो इख्तलाफ़ कर रहे हैं। क्या इस बात ने भी इन्हें कोई हिदायत नहीं दी कि हमने पहले बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया जिनके मकानों में ये चल फिर रहे हैं। इसमें तो बड़ी बड़ी निशानियां हैं, क्या फिर भी ये नहीं सुनते? क्या ये नहीं देखते कि हम पानी को बंजर ज़मीन की तरफ बहा कर ले जाते हैं, फिर इससे हम खेतियाँ निकालते हैं जिसे इनके चौपाए और ये खुद खाते हैं? क्या ये फिर भी नहीं देखते और कहते हैं ये फैसला कब होगा? अगर तुम सच्चे हो तो बतलाओ, जवाब दे दो कि फैसले वाले दिन ईमान लाना बेईमानों को कुछ काम ना आएगा और ना इन्हें ढील दी जाएगी। अब आप इनका ख्याल छोड़ दें और मुंतजर रहें, ये भी मुंतजर हैं। क्या पता चला? अब देखिए रिजल्ट क्या आता है। क्या सीखा? ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई मोहलत है, इससे फ़ायदा उठाकर नेक काम करने हैं। बोलिए, अल्लाह सुभान ताला की फरमा बरदारी करनी है, सब्र करना है, पहली उम्मतों के बुरे अंजाम से सबक हासिल करना है, अल्लाह की निशानियों पे गौर व फिक्र करना है, दाई दीन बनना है इंशाल्लाह। चलिए एक और खूबसूरत सूरत जिसका कुछ हिस्सा इस पारे में और अगला हिस्सा अगले पारे में। सूरतुल अहज़ाब। सूरत अहज़ाब बहुत ही खूबसूरत सूरत है जिसमें ग़ज़वे खंदक के बहुत सारे वाक़ियात हैं। इस जंग में मुनाफिकों का निफाक खुल के सामने आ गया और मुसलमानों ने अपने दिफा के लिए एक खंदक खोदी। गैर मुसलमों के लिए ये एक नया तजुर्बा था, लेकिन अल्लाह ने अपने दीन के दिफा के लिए सहाबा किराम और नबी सल्लम से वो काम ले लिया जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक नहीं मिलती। आइए पढ़ते हैं और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमसे भी आज के दौर में अपने दीन का दिफा करवा ले। पहली 8 आयतें 1 से 8 टॉपिक लिखिए, अल्लाह का निज़ाम ही नाफिस होकर रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नबी युत्तकिल्लाह वला तुतील काफिरीन वल मुनाफिकीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। ए नबी, अल्लाह ताला से डरते रहिए और काफिर और मुनाफिकों की बातों में मत आ जाइए। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। जो कुछ आपकी जानिब आपके रब की तरफ से वही की जाती है इसकी ताबेदारी कीजिए। यकीन मानो कि अल्लाह तुम्हारे हर अमल से बाखबर है। आप अल्लाह ही पर तवक्कुल रखें, वो कारसाजी के लिए काफ़ी है। किसी आदमी के सीने में अल्लाह ने दो दिल नहीं रखे, और अपनी जिन बीवियों को तुम माँ कह बैठते हो इन्हें अल्लाह ताला ने सचमुच तुम्हारी माएँ नहीं बनाया और ना तुम्हारे ले पालक बेटों को वाकई तुम्हारे बेटे बनाया। ये तो तुम्हारे अपने मुंह की बातें हैं। अल्लाह ताला हक बात फरमाता है और वो सीधी राह सुझाता है। ले पालकों को यानी अडॉप्टेड बच्चों को इनके हकीकी बापों की तरफ निस्बत करके बुलाओ। अल्लाह के नज़दीक पूरा इंसाफ ये है, अगर तुम्हें इनके हकीकी बापों का इल्म ही ना हो तो तुम्हारे दीनी भाई और दोस्त हैं, तुमसे भूल चूक में जो कुछ हो जाए इसमें तुम पर कुछ गुनाह नहीं, अलबत्ता गुनाह वो है जिसका तुम इरादा दिल से करो। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला है। पैगम्बर मोमिनों पर खुद इनसे भी ज़्यादा हक रखने वाले। हाईलाइट करें, अगर नबी सल्लम का कोई और हक हमें ना भी बताया जाता ना कि अल्लाह के नबी के क्या हकूक हैं हम पे, तो ये एक हक काफ़ी है। अपनी जान पे तरजीह ना दो नबी को। हज़रत उमर ने एक मौके पे कहा, अल्लाह के नबी आप मुझे हर चीज़ से प्यारे हैं। कहा अपनी जान से भी ज़्यादा? कहा नहीं, जान से तो नहीं। कहा फिर तेरा ईमान पूरा नहीं। हाथ फेरा आपने उनके सीने पे, अल्लाह ने उमर का सीना खोल दिया, तो उमर ने कहा अल्लाह के नबी अब मुझे आप मेरी जान से भी प्यारे हैं। अल्लाह हमें भी नबी को अपनी जान से आगे रखने वाला बना दे। और पैगंबरों की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं और रिश्तेदार किताबुल्लाह की रूह में बनिस्बत दूसरे मोमिनों और मुहाजिरों के आपस में ज़्यादा हकदार हैं। हाँ, मगर ये कि तुम अपने दोस्तों के साथ हुस्ने सलूक करना चाहो, ये हुक्म इलाही में लिखा हुआ है। जबकि हमने तमाम नबियों से अहद लिया और ख़ास तौर पर आप से और नूह से और इब्राहिम से और मूसा से और मरियम के बेटे ईसा से, और हमने इनसे पक्का और पुख्ता अहद लिया ताकि अल्लाह ताला सच्चों से इनकी सच्चाई के बारे में सवाल करे, और काफिरों के लिए हमने अलमनाक अजाब तैयार कर रखा है। क्या पता चला? देखिए सूरत बड़ी यूनिक स्टाइल से शुरू होती है, दो टोक अंदाज़ है। असल में इस सूरत में मुआशरे में फैली हुई रस्में टूटेंगी जो लोगों को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी होती हैं। नबी सल्लम को अल्लाह ने शुरू में ज़रा अलर्ट कर दिया। और याद रखिए कि इंसान बुनियादी तौर पे कमज़ोर और ज़रूरतमंद है, इसलिए वो कादरे मुतलिक और गनिये मुतलिक अल्लाह की पनाह में आकर हर किस्म की मुश्किलात पे काबू पा सकता है। उसको चाहिए कि कहे हसबुनल्लाहु व नेमल वकील, हमको अल्लाह काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। ये कहकर अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलात के ख़िलाफ़ अल्लाह की पनाह मांगिए। जब कोई इंसान तंग करे तो अपने मामले अल्लाह के सपुर्द कर दीजिए और इस बात पर यकीन रखिए कि वही आपका कारसाज है, और जब आप उसकी पनाह मांगेंगे तो वह आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात इसमें ले पालक बच्चों की हुई, कल थोड़ी सी बात करूँगी इसमें इंशाल्लाह। ये भी एक रिश्ता है जो हमारे माशरे में बड़ा आम है, मुँह बोला बेटा, मुँह बोली बहन, मुँह बोला ये तो मैंने भाई बनाया हुआ है। इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। महरम और गैर महरम की हदें नहीं टूटनी चाहिए, चाहे आप उसको सगा भाई कह लें। हदीस में आता है जिसने जानते बूझते अपने गैर बाप की तरफ मंसूब किया, इसने कुफर का इर्तकाब किया। ये बुखारी की रिवायत है। क्या सीखा? मैं बोलूँगी, आपने इंशाल्लाह बोलना है। तकवा इख्तियार करना है, मुनाफिकीन का साथ नहीं देना, अपने आमाल का जायज़ा लेना है, अपने हर मामले में अल्लाह को काफ़ी समझना है, औलाद को उनके बाप के नाम से ही पुकारना है, तारीखी वाक़ियात से सबक लेना है। चलिए अल्लाह ताला आप से राज़ी हो जाए। आगे चलते हैं आयत नंबर 9 से 20, 9 to 20। टॉपिक लिखिए दिल के बीमार लोग नाकाम होंगे। कौन होता है दिल का रोगी? मुनाफिक। यहाँ मुनाफिकों की बातें हैं, दिल बड़ा करके सुनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरु नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़रसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरौहा व कानल्लाहु बिमा तअमलूना बसीरा। ये सब वाक़यात ग़ज़वे खंदक के सिनेरियो में, और यहाँ बिल्कुल ग़ज़वे तबूक और जो से पीछे थी हुनैन, उसकी रोशनी में जो निफाक खुलकर सामने आया था उसको सामने रख लीजिए। ये जंगी या आज के दौर में अमली तकाजे दीन के नहीं आए तो मोमिन मुनाफिक का फ़र्क भी नहीं पता चलता कि ऐन वक्त पे कौन धोखा दे जाएगा और कौन अपनी ज़िम्मेदारी को आसन दर्जे पे निभाएगा। फरमाया ऐमन वालो, अल्लाह ने जो एहसान तुम पर किया इसे याद करो जबकि तुम्हारे मुकाबले को फौजों पर फौजें आईं। आज भी आई हुई हैं फौजें मुसलमानों के ख़िलाफ़ जी, नज़र नहीं आती लेकिन वहाँ भी आई थी, आज भी आई हुई हैं। अल्लाह हमें आज भी दीवारें बांधने वाला बना दे। फिर हमने इन पर तुंदो तेज आंधी और ऐसे लश्कर भेजे जिन्हें तुमने नहीं देखा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला सब कुछ देखता है। जबकि दुश्मन तुम्हारे पास ऊपर से और नीचे से चढ़ आए, जबकि आंखें पथरा गईं और कलेजे मुंह को आ गए, और तुम अल्लाह की नस्बत तरह तरह के गुमान करने लगे। यहीं मोमिन आजमाए गए और पूरी तरह झंझोड़ दिए गए। ज़ुलज़िलु ज़िलज़ालन शदीदा। और इस वक्त मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में शक का रोग था कहने लगे अल्लाह ताला और इसके रसूल ने हमसे महज धोखे फरेब का ही वादा किया। नऊज़ुबिल्लाह। मुनाफिक सिर्फ फतूहात का दोस्त होता है, ज़रा सी इस्लाम पे मुश्किल घड़ी आ जाए वो इस्लाम छोड़ के गैरों के साथ जाके मिलता है लोटे की तरह कि जो जमात जीते उसके साथ चले जाओ। अल्लाह हमें ऐसी दोगली पॉलिसी से बचाए। अल्लाह पे और रसूल पे शक करना है तो बंदों पे तो करने का वाकई हक है। इन्हीं की एक जमात ने हांक लगाई कि मदीना वालो तुम्हारे लिए ठिकाना नहीं, चलो लौट चलो। और इनकी एक जमात ये कहकर नबी सल्लम से इजाज़त मांगने लगी हमारे घर गैर महफूज हैं, हालांकि वो खुले हुए और गैर महफूज ना थे बल्कि इनका पुख्ता इरादा भाग खड़े होने का था। और अगर मदीने के अतराफ़ से इन पर लश्कर दाखिल किए जाते फिर इनसे फितना तलब किया जाता तो ये ज़रूर इसे बर्पा कर देते और न लड़ते मगर थोड़ी मुद्दत। इससे पहले तो उन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि पीठ न फेरेंगे और अल्लाह से किए हुए वादे की बास परस्त तो होगी, यानी अगर नाम लेके अल्लाह के कमिटमेंट्स की हैं और नहीं निभाओगे तो पूछा जाएगा, और कौन पूछेगा? अल्लाह पूछेगा। बंदा तो हर एक को पूछ भी नहीं सकता। कह दीजिए कि तुम मौत से या खौफ कत्ल से भागो तो ये भागना तुम्हें कुछ भी काम ना आएगा और इस वक्त तुम कम ही फ़ायदा उठाओगे। पूछिए अगर अल्लाह तुम्हें कोई बुराई पहुंचाना चाहे या तुम पर कोई फजल करना चाहे तो कौन है जो तुम्हें बचा सके या तुमसे रोक सके। اپنے لیے سوائے اللہ کے کسی کو حمایتی یا مددگار نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے انہیں بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں، اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، خریدتے ہیں دوسروں کو۔ یاد رکھیے، پھوٹ ڈلوانا شیطان کا کام ہے۔ بعض دفعہ اپنے مفاد کے لیے دین کے کام کرنے والوں کو ادھر سے ادھر کھینچنا، یہ بھی شیطان کی ایک چال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے بچا کر رکھے۔ اور کبھی کبھی ہی لڑائی میں آ جاتے، تمہاری مدد میں پورے بخیل ہیں، پھر جب خوف اور دہشت کا موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں، اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ منافقوں کے ایک ایک باڈی ایکشن کو اللہ نے بیان کر دیا۔ پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم پر اپنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں۔ مال کے بڑے ہی حریص ہیں، ایمان لانے والے ہی نہیں، اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے، اور اگر فوجیں آ جائیں تو تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش وہ صحرا میں بادیہ نشینوں کے ساتھ ہوتے، یعنی جنگل میں رہنے والوں کے ساتھ، کہ تمہاری خبریں ہی دریافت کرتے رہتے۔ اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو بھی کیا، نہ لڑتے مگر برائے نام۔ منافق ساتھ چلا جائے پھر بھی کوئی نہیں کام کرے گا، گھر بیٹھے گا تو بھی تبصرے اور فتنے ہی پھیلائے گا۔ بس اس کا ایک ہی علاج ہے، اگنور اگنور اور اگنور، اوور لک کیجئے۔ کیا سیکھا؟ انشاءاللہ کے ساتھ کہیں گے، تقوی اختیار کرنا ہے، اپنے دل کی بیماریوں کو دور کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پہ اعتماد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی دعائیں مانگنا ہے، بخل سے پرہیز کرنا ہے، اللہ سے نیک اعمال کی قبولیت کی دعا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ چلیے آخری رکوع، سورت کا تو نہیں پارے گا، کیا ٹاپک لکھیے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آیت 21 سے 27، 21 سے 27۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے۔ سچ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین رول ماڈل تھے، تو پھر ہم ان سے کتنا ملتے جلتے ہیں، ہماری زندگی، ہمارا رہن سہن، یہ سوچنا ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اور ایمانداروں نے جب کافروں کے لشکروں کو دیکھا اور بے ساختہ پکار اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور فرما برداری کے طریقے میں اور اضافہ کر دیا۔ مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تو انہیں سچا کر دکھایا، بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور اگر چاہے تو ان منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے بھرے ہوئے ہی نا مراد لٹا دیا، کفار کو کچھ نہیں ملا اس جنگ میں، اور اللہ نے مسلمانوں کا بال کبھی کا نہ کیا، یہ اللہ کے وعدے۔ انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی کافی ہو جا، ہر پروجیکٹ میں، ہر نیکی کے خیر کے سلسلے میں۔ اللہ ہمیں لوگوں پہ نہ ڈالنا، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ دین کی، دنیا کی ہر ضرورت خود پوری کر لے، جانی، مالی، افرادی، سکلز۔ یا اللہ خود ہی اپنی طرف سے تو ساری مدد بھیج دے، جیسے تو نے احزاب کے موقع پہ بھیجی تھی۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غالب ہے، اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی، انہیں بھی اللہ نے ان کے قلوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا کہ تم ان سے ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو، اور اس نے تم ان کی زمینوں کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مال کا وارث کر دیا، اور اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا بھی نہیں۔ یہ سب خیبر کی فتوحات کی خوشخبری ہیں، اب سیرت کا تو موقع نہیں ہے، ورنہ آپ اس کو انجوائے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، یعنی دنیا چاہیے تمہیں، ज़्यादा से ज़्यादा, और जीनत चाहती हो दुनिया की तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिला दूँ और तुम्हें अच्छाई के साथ रुख्सत कर दूँ। और अगर तुम्हारी मुराद अल्लाह और उसका रसूल और आखरत का घर है तो यकीन मानो तुम में से नेक काम करने वालियों के लिए अल्लाह ताला ने बहुत ज़बरदस्त अजर रख छोड़े हैं। ऐ नबी की बीवियों, तुम में से जो भी खुली बेहयाई का इर्तकाब करे इसे दोहरा अजाब दिया जाएगा और अल्लाह के नज़दीक ये बात बहुत आसान है। बेटर हाफ और बिटर हाफ। नबी की बीवियाँ अपने शौहर के लिए बेटर हाफ थीं। ग़ज़वे खंदक के बाद बहुत फतूहात हुई, खैबर के बाद तो माल आम हो गया, सबके चूल्हे जल गए, नहीं जले तो बीवियों के चूल्हे नहीं जले। महीने भर, तीन तीन महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, तीन चांद दो महीने तक ना जलता। हज़रत आयशा ने कहा कि नबी के इतने घरों में एक में भी चूल्हा नहीं जलता था। कहा फिर खाते क्या थे, गुजारा कहाँ था। कहा दो काली चीज़ों पर, वो क्या, पानी और खजूर। खजूर तो काली होती है, पानी क्यों काला है, रेत मिला हुआ पानी मिलता था। ये थी बेटर हाफ। अच्छी बीवी की पहचान लिखिए, आपके मेरे लिए फ़ायदेमंद है। शोहर की तंगी तुरशी में उसका तमाशा न बनाए, उसका ढंढोरा न पीटे। देते कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं, कंजूस हैं, बखील हैं, ऐसी बातें करने वाली बीवियाँ बिटर हाफ बन जाती हैं। नबी की बीवियों से सब्र करना सीखिए तो आपको मुझे भी अपने हाल पर रश्क आएगा, जो कुछ हमें हमारे शोहरों ने दिया हुआ है अल्लाह हमें राज़ी कर दे। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसने अपने वादे को सच्चा किया, अपने बंदे की मदद की, अपने लश्कर की इज्जत की, तमाम दुश्मनों से आप ही निमट लिया और सबको शिकस्त दे दी, इसके बाद और कोई भी नहीं। अल्लाह आज भी तो सारे मामलों से खुद ही निमट जा, हमारे हाथ पे ना डाल दे। सही बुखारी की यह रिवायती 4114। क्या सीखा आपने, इंशाल्लाह कहना है दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, इसलिए आखरत की तैयारी करनी है। दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत में मगन नहीं हो जाना, जन्नत की तलब रखनी है, नेकियों को फैलाना है, सालेह दोस्तियां रखनी है, अल्लाह के यहाँ कोई छोटा बड़ा सज़ा से नहीं बच सकता ये यकीन रखना है, शोहर के साथ तंगी तुरशी में वक्त गुजारना है, उसके साथ अपने मामले को अच्छे से अच्छा रखना है। आज घर जाकर शोहरों के लिए कुछ काम करना है अपने, आज होमवर्क का बड़ा सख्त, और जिनके दुनिया से चले गए वो उनके लिए दुआ कर दें। आज जाकर अपने शोहर का शुक्रिया अदा करना और मुंह से कहना है थैंक यू फॉर मैरिंग मी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे शादी की, और जो जवाब मिलेगा वो कल लिख के लाना है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।